ओम शांति। रमेश भाई को गीत गाने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बाप दादा के नूरे रत्न, कर्तव्य परायण, यज्ञ को आगे बढ़ाने वाले, लगनशील, धैर्यता के परिचायक महारथी भाई जी, अति प्यारे मृत्युंजय भाई जी हमारे सामने उपस्थित है। हम उनका करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। मृत्युंजय भाई जी पिछले 45 वर्ष से इस यज्ञ की विभिन्न क्षेत्रों में अथक सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी के कार्यकारी सचिव, शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष, यूनेस्को तथा यूनिसेफ के संरक्षक में, लिविंग वैल्यूज एंड एजुकेशन प्रोग्राम के राष्ट्रीय संयोजक के साथ आदरणीय भाई जी द अल्टीमेट ट्रूथ फिल्म के निर्देशक भी हैं। आपने विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर भारत तथा 50 से भी अधिक देशों में भाषण के साथ साथ टीवी तथा रेडियो इंटरव्यूज भी दिए हैं। इनमें से यूएसए, इंग्लैंड, थाईलैंड, हांगकांग, वेस्ट इंडीज, जापान, हॉलैंड इत्यादि प्रमुख है। आपके व्यक्तित्व में सेवा भाव, उत्साह भावना कूट कूट के भरी हुई है, जो हमें दिखाई देती हैं। आपने समस्त देश में शिक्षा द्वारा उन्नति करने का बीड़ा उठाया है। हर वर्ष एजुकेशन कॉन्फ्रेंस द्वारा देश भर के अध्यापक, प्रोफेसर, वाइस चांसलर इत्यादि को मधुबन के शांत वातावरण में मनन चिंतन के लिए इकट्ठा किया है। ये सब आपके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हम देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारी विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ में समझौता करके पीजी डिप्लोमा, बीए, एमएससी, एमबीए जैसे वैल्यूज तथा अध्यात्म में कई कोर्स प्रारंभ किए हैं। हमने देखा है कि आपके प्रयासों के द्वारा ही निस्वार्थ प्रयासों के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा कुमारीज ने विश्वविद्यालय के द्वारा एक ऐसे प्रोग्राम भी संचालित किए हैं, जैसे कि आज हम देखते हैं कि एमएससी तथा एमबीए कोर्स नियमित स्ट्रीम के द्वारा प्रारंभ किए जा रहे हैं। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी को बहुत बार भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से भी, अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और हम ये भी देखते हैं कि आज मधुबन में जो भी वीआईपी सेवा होती है और आप उन्हें धैर्यता से निर्विघ्न रूप से संचालित किया करते हैं। अवार्ड जहां पर मिले हैं, 2003 में मोरारजी भाई देसाई इंटरनेशनल अवार्ड फॉर पीस एजुकेशन, 2009 में डायनेमिक इंडियन ऑफ द डेकेड अवार्ड, 2013 में हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सुशोभित किया गया है। ऐसे प्रतिभाशाली के आज हम सम्मुख खड़े हुए हैं। और भाई साहब, हम लोगों को ब्राह्मण जीवन के लक्ष्य और लक्षण विषय पर प्रेरणा देने जा रहे हैं आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब।
ओम शांति, ओम शांति, और एक बार ओम शांति। सदा शांति के स्वमान में स्थित रहने वाले, शांति की सागर बाप की याद में मस्त रहने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया स्थापन करने वाले, हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता का स्वरूप को अनुभव करने वाले आप सब विशेष इस समय बाबा का स्मृति दिवस के अवसर पर बाप दादा से मुलाकात करने के लिए, शांति वन परिसर में तपस्या करने के लिए, बाप दादा से वरदान प्राप्त करने के लिए, बाप दादा से इस नए वर्ष की विशेष शक्ति और वरदान और संपन्नता की प्रेरणा लेने के लिए आप सभी उपस्थित हैं। आप सबको, चाहे नए बच्चे हैं चाहे पुराने बच्चे हैं, हम सबका ये संगम युग में ब्राह्मण जीवन, ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारी टाइटल हमारा जीवन का लक्ष्य आप सबको मालूम है। लक्षण भी आप सबके हरेक अपने अपने चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं, परंतु फिर भी जो बाबा ने जो लक्ष्य दिया, हम कहाँ तक उस लक्षणों को अपने आत्म साक्षात्कार किया व जीवन में नेचुरल बने हैं, वह कभी कभी इसको स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको हरेक को अपने मन की दर्पण में देख सकते हैं, ज्ञान की दर्पण से देख सकते हैं, संस्कार की दर्पण से देख सकते हैं, स्वभाव और संस्कार का दर्पण में देख सकते हैं, आपके सोच में देख सकते हैं। सबसे पहले बाबा ने बच्चों को ये मर्जीवा जीवन में, ब्राह्मण जीवन में हमको देहाभिमान से आत्माभिमानी बनाया, अल्पज्ञानी से त्रिकाल ज्ञानी बनाया और साकार दुनिया से हमको आकारी और निराकारी दुनिया का भी परिचय करा के यात्रा करा रहे। हमारा योग अर्थात तीनों लोक का संचार करना, तीनों कालों का जानना, समझना, रियलाइज करना, उसका अनुभव में उतारना, ये हमारा संगम व्यक्ति जीवन का विशेष। साथ साथ में हम 84 जन्मों में संगम एक अति अमूल्य है, विशेष है, हर घड़ी अमूल्य है और इस जन्म में बाप दादा हमारा साथ है। देवता जल में बाबा हमारा साथ नहीं रहते हैं, वह तो सृष्टि दर्शन में 84 जन्मों में हम आत्माएं आत्मा के साथ, आत्माएं विभिन्न आत्माओं के संगठन में, साथ में विभिन्न संबंधों में आते हैं, परंतु परमात्मा बाप हम आत्मा के साथ संबंध में, चाहे शिक्षक के रूप में, चाहे बाप के रूप में, चाहे सदगुरु के रूप में, चाहे सका के रूप में, चाहे हर साथ हर घड़ी हमारा साथी सहयोगी बन करके नहीं रहता है। ये संगम एक ऐसी घड़ी है जिसमें हम बच्चों के साथ बाबा जैसे साकार में हो, आकार में हो, जैसे आपको याद करेंगे उसी रूप में बाबा हमारा साथ है, परंतु साथ तब है सबसे पहले हमारा बुद्धि क्लीन हो, क्लियर हो, प्योर हो, पीसफुल हो और ब्लिसफुल हो। हमारा बुद्धि इतनी स्वच्छ हो तब तो बाबा आपको शब्द कहने से पहले संकल्प करते हुए बाबा आपके सम्मुख है, हाजिर है, परंतु ये हम लोगों को अपने संकल्पों से जान सकते हैं, अपने संस्कारों से जान सकते हैं कहाँ तक हमने बाबा को अपना साथी बनाया, क्या अनेक आत्माओं को, घटनाओं को, स्थूल साधनों को, शक्तियों को व स्थूल चीजों के कितना हमारा संबंध है, वह उसका जितना याद आता है उतना बाबा का याद आता है, वह इन सब से मुक्त है ना मुक्त है अपने आप को जानना चाहिए। हमारा लक्ष्य है संगम युग में हम आशरीरी भाव, अव्यक्त भाव, निराकारी भाव, निश्चिंत भाव और सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ रहने का बाबा ने वरदान दिया, ये हमारा सबका लक्ष्य है, परंतु फिर भी कई लोगों को पूर्व संस्कारों का घर्षण है व दूसरों की गुणों अवगुणों को देखने के आदत है। गुण फिर भी देखो अच्छी बात है, कभी अवगुणों को देखते हैं, घटना को देखते हैं, वह उसको याद करते हैं, वह उसको वर्णन करते हैं, उस समय उस आत्मा का स्वरूप अपने जीवन में बन जाता है। ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये हमारा लक्षण भी नहीं है, ये ईश्वरीय शिक्षा का श्रीमत का उल्लंघन है, ये श्रीमत का उल्लंघन है। ऐसा करते करते रहेंगे तो आप संगम युग में भीत भी जाएगा, आप फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि संगम युग में हमारा लक्ष्य है हम तो फरिश्ता बनना, क्योंकि फरिश्ता है सो देवता बनना है। फरिश्ता का अर्थात इस दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति व कोई भी चीज से आकर्षण न हो, उससे मुक्त हो, तब तो हम फरिश्ता बन सकते हैं। इस दुनिया का भी और बाबा को दोनों साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि ये पाप की दुनिया है। पाप की दुनिया बाप नहीं रह सकते, पाप के संस्कार में बाप का संस्कार नहीं समावेश हो सकते है। और बाप के संस्कार हो तो पाप के संस्कार ऑटोमेटिकली दूर हो सके। इसके लिए हम कहाँ तक बाबा के संस्कार अपनाया और वो संस्कार हम सबको शुद्ध बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, पूजनीय बनाएंगे, क्योंकि ये जीवन हम सबको बाबा ने भी बहुत मुरली में कहा, आज भी में कहे, क्योंकि पवित्रता ही हमारा संगम की सर्व प्राप्ति है। वो पहले वज्र के चित्ता से भी अमूल्य है, क्योंकि द्वापर युग में भी देखते हैं कई महात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, और जो आत्माएं नए नए आत्मा इस धरती पर आते हैं उनकी सिर पर वो मुकुट दिखाते हैं, लाइट का मुकुट दिखाते हैं, परंतु फिर भी वो लाइट के मुकुट हम ब्राह्मणों के मुकुट में बहुत अंतर है, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए स्वयं बाबा ने इस जल में वरदान के रूप में पवित्रता का ताज पोषित किया, और दूसरी आत्माएं फिर भी अपने स्वधर्म के आधार से नए नए आत्मा इस धरती पर आते हैं, उनके अंदर वो पवित्रता के संस्कार होने के कारण लोकप्रिय हो जाते हैं। लोकप्रिय बाबा ने इस समय में हम बच्चों को अपने आप में समान बनाने के लिए सबसे पहले इस जन्म के गिफ्ट है, पवित्र बनो, योगी बनो। हम पवित्रता ही हमारा सर्व श्रृंगार का ताज है, क्योंकि इस ताज पोषी बाबा ने संगम युग में बच्चों को किया। क्या हम लोग इस पवित्रता को रक्षा कर पा रहे हैं? वह कभी कभी पवित्रता की ताज हिलता है, वो पवित्रता अपवित्रता की संघर्ष है और युद्ध है। बाबा ने कहा अब योगी बनो, योद्धा नहीं बनो, लड़ाकू नहीं बनना, योद्धा बना नहीं बनना, आप योगी बनना। योगी अर्थात निरंतर योगी, चाहे कर्म करते हुए योगी, आप हर प्रकार के योग का हमको बाबा ने कहा सहज योगी, निरंतर योगी। हम निरंतर योग है, योग युक्त है, जहाँ योग युक्त है वहाँ माया वार नहीं कर सकता है। युक्त युक्त नहीं है तो हमारा माया वार नहीं कर सकते। क्या घड़ी घड़ी माया वार करता है, हमारा समय वेस्ट करते हैं, वह हम सभी योद्धा बन करके दूसरों की बातों को व माया की बातों को लेकर के हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। अपने आप को देखना चाहिए, क्योंकि यदि हम संघर्ष करते रहेंगे, योद्धा बनते रहेंगे और हमको कर्मातीत नहीं बन सकते हैं और मन मनाभाव स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हैं और निरंतर बाबा का साथी का अनुभव नहीं कर सकते हैं, साथ साथ में हम अशरीरी भी नहीं बन सकते। योद्धा कब कर सकते हैं? देहाभिमानी आत्मा है वो योद्धा बनता है, अशरीरी आत्मा योद्धा नहीं बन सकते हैं। आज भी बाबा ने बहुत सूक्ष्म रूप में कहा जहाँ पढ़ाई है, जहाँ योग है, वहाँ कोई प्रकार की चिंताता नहीं है। जिसका लक्ष्य वही है तो इन बातों को किनारा करके आगे बढ़ जाते हैं। पढ़ाई में कमजोर है, योग में कमजोर है और दैवी गुणों में कमजोर है, तब तो कोई ना कोई बातों में उलझन में रहेगा। उलझन के कारण उनका बुद्धि एकाग्र नहीं होता है, उनको बाप समान बनने नहीं देते हैं, वह कोई ना कोई अवगुणों के कारण उनको सद्गुणों के विकास नहीं होता है। इसके लिए बाबा ने इसमें कितना तक हमने माया जीत बना है, विकर्मा जीत बना है, और कितना तक हमने मन मनाभव जब चाहे, जिस घड़ी चाहे, जिस सेकेंड चाहे, जिस परिस्थिति में हम बाबा के साथ बाप समान फरिश्ता बन सके, अपने आप को चेक करना चाहिए। यदि हम इस चेक करके हम परिवर्तन करने में दृढ़ संकल्प नहीं करते तो हमको टाइम वेस्ट होता है। इसके लिए बाबा ने दृढ़ संकल्पों की चाबी हमको दिया। इससे पूर्व में बहुत हरेक मुरली में बाबा ने कहा आपको दृढ़ संकल्प करना, आपकी लक्ष्य को लक्षण में परिवर्तन करना। आपको एम एंड ऑब्जेक्ट तो क्लियर है, परंतु उसका लक्षण हमारे जीवन तक कहाँ तक समावेश किया, वहाँ विजय प्राप्त किया, वहाँ अपना निजी स्वरूप बनाया, क्योंकि ब्रह्मांड सो फरिश्ता जीवन में देवता का संस्कार इधर ही होगा। सत्ययुग में देवता शरीर भी होगा, परिवार भी होगा, परिसर भी होगा, वायुमंडल होगा, परंतु संगम युग में ब्राह्मण जीवन है, एक दर्व दुनिया है, एक तमो प्रधान की दुनिया है, उसका वर्णन करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप सभी पहचानते जानते हैं। ऐसी दुनिया की संस्कार किसी भी रूप में, किसी भी कारण से, किसी भी वश होकर के अपने ऊपर प्रभावित करता है, इसका मतलब आपका श्रेष्ठ संस्कार, ईश्वरीय संस्कार, ब्राह्मण संस्कार व देवता का संस्कार उनके ऊपर प्रभावित करना चाहिए, बल्कि आपको वो संस्कार प्रभावित करता है। इससे ये सिद्ध होता है हमने अभी तक माया जीत नहीं हुई, अभी तक हमको वो संस्कार का पूर्ण विजय नहीं हुआ। इसके लिए इससे सिद्ध होता है हमारा तीसरा नेत्र सदा खुला नहीं रहता है, कभी कभी खोलते कभी कभी बंद हो जाए। जैसे अमृत वेले कई लोग उठते हैं कई लोग सो जाते हैं, ऐसी उनका तीसरा नेत्र निरंतर खुला नहीं रहता है। कभी कभी आत्माभिमानी, कभी कभी देहाभिमानी, कभी कभी स्थूल साधनों के वश हो जा करके उसकी प्राप्ति, उसकी इच्छा, उसकी लालच, उसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के पुरुषार्थ इन चीजों में चले जाते हैं। उसका समय आध्यात्मिक पढ़ाई में व ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करने में व फरिश्ता बनने में व देवता स्वरूप बनने में उनकी विलंब है, वह कोई न कोई संस्कार की टकराव है। इसके लिए बाबा कहते हैं इस समय में आपको हर घड़ी हर सेकंड आपके चेहरे पर क्या दिखाई देना चाहिए, हर्षित मुक्ता, खुशी, खुशी जैसे खुराक नहीं है, खुशी जैसा शक्ति नहीं है, खुशी जैसा पहचान नहीं है। जो खुशी तब हो सकता है जब मन में स्वच्छता हो, मन में श्रेष्ठता हो, मन में दिव्यता हो, मन में सदा त्रिकालदर्शी हो, मन में आपका बाबा हो, मन में आपका भविष्य दिखाई देता है, आपका भविष्य ऐसे उज्जवल भविष्य आपके आपको दिखाई देता है, तब तो वो खुशी आपके जीवन में दिखाई देता है। जो खुशी हमारा जीवन में खुशी कोई छीन के नहीं जा सकते। जीवन में कोई वस्तु को छीन के जाता है, कोई पेन उठा जाता है, कोई दूसरी चीज उठा के जाता है, आपको एक सेकंड में बुद्धि उधर चले जाता है, परंतु वो तो फिर भी एक प्राप्त कर सकते हैं, वो स्थूल चीज साधन है, उसको हम दोबारा ले सकते हैं, परंतु खुशी हमारा जीवन से चले जाए, जन खुशी जैसा गुण हमारे से चले जाए तो उसको प्राप्त करने में फिर भी बहुत विलंब होता है। इसके लिए बाबा ने कहा था आपके चेहरे पे हर सेकंड में खुशी दिखाई जाए, जहाँ खुशी है तो ये संतुष्टता का अनुभव कराता है, संतुष्टता को दर्शाता है, हम कहाँ तक संतुष्ट है। संतुष्ट मणि बाबा ने वरदान दिया है, संतुष्ट तब हो सकता है जब आत्मा के अंदर वो सर्व गुण है, सर्व शक्ति है, ज्ञान है, तब संतुष्ट हो सकते हैं। कर्मों की गुह्य गति उनको मालूम है और भविष्य अच्छे से जानता है, साथ साथ में बाबा की जो वरदान है उसको इस जीवन में अनुभव कर रहे हैं, तब तो उनके अंदर खुशी है। खुशी बाबा को देखो, दादियों को देखते तो खुशी का अनुभव होता है, ऐसे ब्राह्मणों का जीवन देकर के लोगों को खुशी होना चाहिए, और ब्राह्मणों के अंदर जो अंधकार ऑटोमेटिकली मिट जाए, और ब्राह्मणों को देकर के धरती में दुनिया में हर प्रकार की जो दुख है, दर्द है, अशांत है, भय है, रोग है, चिंता है आदि आदि जो भी है, उनके सल्यूशन क्या है, उनका सल्यूशन ब्राह्मण जीवन का दर्पण, उनकी ब्राह्मण जीवनों को देख करके उनके अंदर खुशी ऑटोमेटिकली पैदा होना चाहिए। वो एक सैंपल है, वो एग्जाम्पल है, वो सैंपल को देख करके लोगों को ये जीवन कैसे बनाया, किसने बनाया, आपको देख करके बाबा को याद आना चाहिए, आपको देख करके बाबा का स्मृति मिलना होना चाहिए, आपको देख करके विश्वविद्यालय का परिचय हो जाना चाहिए, आपको देख करके जीवन जीने की कला अपने जीवन में आना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जीवन को देख करके लोगों को खुशी मिलता है। लोग तो अभी भी कहते हैं ये ओम शांति वाले आ गए, ये ओम शांति वाले, अभी तो पहचान है संसार में क्या है? ये ओम शांति वाले है? ये श्वेत वस्त्रधारी लोग हैं, ओम शांति अर्थात तो उसमें सब प्रकार की प्राप्ति दर्शा देता है, ज्ञान भी है, योग भी है, सेवा भी है, और शक्ति भी है, वरदान भी है, आपकी चेहरा हर्षित मुक्ता दिखाई दे। इसके लिए ओम शांति में सभी समस्याओं का समाधान भी है, सभी समस्या के समाधान है। तभी भी हम लोगों को कभी कभी बच्चों का चिल्ड्रन प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इधर बच्चे आते हैं बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनिंग लेके जाते हैं, घर में जाकर के घर में माता पिता व कोई लोग झगड़ते हैं व जोर से बात करते हैं, तब बच्चे कहते हैं ओम शांति ओम शांति, इतने बच्चे कह देते हैं वो माता पिता दंग हो जाते हैं, इतनी छोटी बच्चे उनको टीचर बन जाते हैं, छोटी बच्चे उनको वो कहते हैं मैं दादी को बता देंगे, बाबा को बता देंगे, आप तो इतनी उसको इतनी अच्छी उसका इसकी मीठी भाषा, उनकी एक उनकी स्वच्छ फेस, उनका वो ओम शांति कहते बच्चों में भी और दूसरों में भी, बड़ों में भी एक सावधान एक अटेंशन हो जाता है। ये बच्चे इतना सेवा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। क्या बच्चे इतनी ज्ञानी बन सकते हैं, हम नहीं बन सकते हैं। बच्चे इतने सुसंस्कृत हो सकते हैं तो हम नहीं बन सकते हैं। बच्चे इतना तो जीवन में लक्ष्य को जीवन में धारण कर सकते हैं तो हम उन जीवन में वो लक्ष्य को उतार नहीं सकते हैं। तो ये सच्ची हमको सोचने के विषय है। इसके लिए हमको छोटे बच्चे बन जाना चाहिए। हम तो बड़े हैं, बूढ़े हैं, शिक्षित हैं, धनवान हैं, फलाना है, ये है, ये सभी भूत, ये भूत है, ये सभी हमारा योगी जीवन के लिए विघ्न है। इन सबको भूल जाना चाहिए। हमको ये भूल के हम एक परमात्मा के संतान है। बाबा जितने ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ब्रह्मा बाबा इतनी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी है ब्रह्मा महा, फिर भी इतनी ह्यूमिलिटी है। इतने मीठे बच्चे, चिकले दे बच्चे, नूरे बच्चे, लाडले बच्चे, बच्चे बच्चे कहकर के हम बच्चों को क्या बना दिया। बच्चे बच्चे कहकर के बच्चों को विश्व का मालिक बना दिया। दुनिया में कोई ऐसी ताकतवान नहीं है, ऐसी कोई शक्तिवान नहीं है, कोई ऐसी विद्वान नहीं है, कोई ऐसी महात्मा नहीं है जो इस संसार में विश्व का मालिक किसी को नहीं बने। थोड़े टाइम के लिए कुछ मालिक बना, फिर भी वो लोग गंवा देते हैं, परंतु बाबा ने हमको 2500 साल तक विश्व का मालिक बनाते हैं। प्रकृति का भी मालिक बनाता है, पंच तत्व का भी मालिक बनाता है। ऐसी दुनिया का मालिक हम बनने वाला है, वो दुनिया हमारे सामने है, वो इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बच्चे, कल्प पहले के बच्चे, कल्प पहले की देवताएं तैयार हो जाए तो हम पुनः वो सृष्टि धरा पर वापस लावे। परंतु वो संस्कार हमारे जीवन में वापस लाए तो धरती पर वो स्वराज भी आ जाएगा, उसका भी नजदीक आ गए हैं। और पंच तत्व भी दुनिया में तंग हो गए हैं और इंसान से तंग हो गए, और तंग होकर के कोई ना कोई उपद्रव आप सबको देखने को मिलता है, संसार में देखने को मिलता है। परंतु पंच तत्व भी परिवर्तन होने के तैयार है, परंतु ब्राह्मण लोग कहाँ तक हम तैयार हैं अपने आप को पहचान सकते हैं। इसके लिए बाबा ने 77 ईयर्स निरंतर एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया। ब्रह्मा बाबा जब भी थोड़ा कुछ बीमार थे, उसी समय भी बाबा ने मुरली मुख से नहीं चला सका, परंतु हाथ में लिख करके मुरली चलाया, और आज दिन तक एक दिन भी मुरली मिस नहीं हुआ। चाहे अव्यक्त मुरली चाहे साकार मुरली, दोनों मुरली आप सबको मिलता है। आजकल तो आप सभी भाग्यशाली है, घर घर में मुरली मिल रहा है। जब पीस ऑफ माइंड की चैनल द्वारा घर घर में मुरली मिल रहा है, घर घर में मधुबन के समाचार, हर क्षण का समाचार मिल रहा है, हर दिन का समाचार मिल रहा है, हर देश विदेश के समाचार मिल रहे हैं। आप इतना भाग्यशाली आत्मा है। बाबा ने बहुत साल पहले ही कहा था ऐसे समय आएगा बच्चे अलग अलग स्थानों पर जाना आना जाना भी मुश्किल हो जाएगा, परंतु उन घर बैठे ही उनकी पालना मिल रहा है। अभी घर बैठे भी उनको हर चीज की उपलब्ध हो रहा है। ऐसे समय पर हम बच्चों को हर घड़ी बाबा को याद की यात्रा में रखकर, बाबा की सेवा में रहकर, अपना तन मन धन समय संकल्प को संपूर्ण समर्पित करके हमको बेगर टू प्रिंस का अनुभव करना चाहिए। कोई भी चीज वेस्ट हो जाता है अपने मन, कोई व्यर्थ जाता है, इसको मन लीकेज हो गया, और धन कोई ना कोई प्रॉब्लम आकर के उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं ईश्वरीय सेवा में, धन वेस्टेज हो जाएगा। और धन कोई भी कोई हम व्यर्थ करते हैं, उसका सही सदुपयोग नहीं करते हैं, ईश्वरीय सेवा में यूज नहीं करते हैं, धन मनमना भाव नहीं हो सकता है। क्योंकि जहाँ धन होगा वहाँ तन भी होगा, जहाँ तन होगा वहाँ मन भी होता है, ये स्वाभाविक है। इसके लिए हमको पहले इन चीजों को जहाँ जहाँ वेस्ट जा रहे हैं उनको बेस्ट बनाना, उनको यूज करना, उनको सफल करना, उनको भाग्य बनाने के विधि के रूप में यूज करना, तब तो हमारा मनमना भाव हो सकता है। इसके लिए तब तो वो फरिश्ता बन सकते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व प्राप्ति हो सकते हैं। सर्व प्राप्ति तब संभव है जब हमारा मन संपूर्ण समर्पित है, धन संपूर्ण समर्पित है और धन संपूर्ण समर्पित है। हम ट्रस्टी होकर के इस जीवन को जिए, अपने तन का भी ट्रस्टी, अपने समय का भी ट्रस्टी, अपनी श्वास का भी ट्रस्टी, अपनी साधनों का भी ट्रस्टी, अपने घर का भी ट्रस्टी, और इस दुनिया का भी हम ट्रस्टी है, हम गेस्ट है। इस दुनिया के हम मालिक नहीं है, हम इस दुनिया के हम लोग गेस्ट है, चंद दिन की मेहमान है। हमको अभी दीदी भी कहते थे, अभी उसका सदैव याद रहता था, अब घर जाना है, अब घर जाना है। जाना तो ही है, अभी सारी दुनिया भी जाना है। हम ब्राह्मणों को पहले घेरा उठे तब तो दुनिया भी उठ सकता है। ब्राह्मणों को ही इधर ज्यादा आकर्षण है तो दुनिया कैसे हो सकती। इसके लिए ये हमारा लक्ष्य है, अब घर जाना है। अब घर जाना हो तो अपना मन उठना चाहिए, और उसके लिए सब पहले ये सब कुछ समर्पित हो जाना चाहिए, तब तो मन उठ सकता है, तब तो मन मना भव हो सकता है। देन मध्याजी भव अर्थात प्रसन्न, मध्याजी भव अर्थात परिस्ता, मध्याजी भव अर्थात सर्व प्राप्ति, मध्याजी भव अर्थात सर्व शक्तिवानों की साथी। तब तो सतयुग में मध्याजी भव अलग बात है, संगम युग में सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना ही मध्याजी भव है। ऐसी मध्याजी भव अर्थात कोई भी असंतुष्ट आत्मा नहीं, हम संतुष्ट आत्मा है। मध्याजी भव अर्थात संतुष्ट, संपूर्ण संतुष्ट है। जो संतुष्ट आत्मा के चेहरे पर सदा खुशी दिखाई देते हैं, जो असंतुष्ट है उसको कोई ना कोई चिंता होगी, कोई ना कोई रोग होगा, कोई ना कोई बीमारी होगा, कोई ना कोई लालच होगा, कोई ना कोई इच्छा होगी, कोई ना कोई स्वार्थ होगा, और वो इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। वो चक्रवर्ती राजा बनने के बजाय माया के चक्कर में आते रहे, वो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेगा। सुदर्शन चक्रधारी होते हुए भी प्रदर्शन चक्र में चले जाता है। तो हम इस समय में हम सुदर्शन चक्रधारी हम सो हम का अनुभव करना, अर्थात माया जीत का अनुभव होना चाहिए। भले माया आपको परीक्षा करने के लिए आ सकते हैं, परंतु आपको विजयी भव बना करके, आपके विजयी वरमाला डाल करके, आपको खुशी देख करके जाएगा। खुशी छीन के नहीं जा सकते, खुशी छीन के नहीं आ सकते, उसको नहीं जा सकते, क्योंकि वो हारा हुआ चीज। हमको विजयी रतन बाबा ने कितनी बार हम लोगों को ये टाइटल दिया, विजयी रतन माया जीत। ये बाबा ने हमको ये वरदान पहले ही दिया हुआ, परंतु उस वरदान को अनुभव करना जीवन में, अनुभव करने की विधि क्या, अनुभव करने की विधि है सबसे पहले संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण है, कहाँ तक हम समर्पण है और कितनी तक हम समर्पण है, हर एक की अपनी ज्ञान की दर्पण में देख सकते हैं, अपने जीवन की हर घड़ी की संकल्पों के दर्पण में देख सकते हैं, संस्कार के दर्पणों में देख सकते हैं। हमारा संस्कार बाप समान है, हमारा संस्कार देवता समान है, हमारा संस्कार फरिश्ता समान है, हमारा संस्कार त्रिकालदर्शी है, त्रिकालदर्शी त्रिनेत्र खुला है। ये बातों को देख करके भी आपके संस्कार को पहचान सकते हैं। यदि आपके अंदर संस्कार में कोई कमी है, त्रुटियां है, वह कमजोरियां है, तब तो बाबा को आप अपने मन की द्वारा एप्लीकेशन दे सकते हैं, बाबा से रूढ़ान कर सकते हैं, वह अपने संकल्पों को परिवर्तन करने के दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। ये दृढ़ संकल्प के माध्यम द्वारा इसको परिवर्तन कर सकते। दूसरा, बाबा ने कहा अमृत वेले जो बच्चे मुझे याद करेंगे वह मेरे साथी बनेंगे, वो सकाश देने के आदत डालेंगे, वह खुद वरदान लेने के लिए दृढ़ संकल्प करेंगे, उनके मैं बंदायमान हूँ, उनकी सेवा हर, उनके सहयोग हर, उनकी वरदान हर, मैं सदा उनके साथ हूँ, उनको वरदान देता हूँ। अब अमृत वेले कई बार हम देखता हूँ, सुबह क्लास में भी इधर कई लोगों को मिस देखता हूँ, इतनी क्लास में आधा आधा रहते हैं, थोड़े ही लोग रहते हैं। इससे ये सिद्ध होते हैं उनको अमृत वेले उनके अंदर आलस्य है, वह अमृत वेले के महत्व नहीं जानते हैं, वह वरदान प्राप्त करने का अनुभव नहीं। मुझे एक बार याद है, बहुत कई बार मेरा सौभाग्य था दादी प्रकाश मणि जी के साथ यात्रा करने के। हम यात्रा करते हुए एक बार हम लोग रात में 12 बजे ट्रेन में सोए, हम एक ही कंपार्टमेंट में थे। सुबह 4 बजे से पहले दादी उठ गई, उठ करके अपने नीचे योग में बैठ गए थे। मैंने बोला दादी को थोड़े समय के बाद में हम भी उठे, एक ही कंपार्टमेंट में थे। उठने के बाद में दादी से पूछा, करीब 30 साल की पुराने बात मैं बता रहा हूँ, और उस टाइम में दादी को मैंने पूछा, दादी आप तो सारा दिन बिजी थे, रात में 12 बजे सोए, अभी 4 बजे आप उठ गए, अभी तो हमारा 1.5 घंटा टाइम है पहुँचने में, जहाँ पहुँचना था, और 1.5 घंटा टाइम आप सो जाओ ना दादी। दादी ने कहा, नहीं मैं अमृत वेले कभी मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि इस समय में बाबा हमको वरदान देता है। यदि मैं उठ करके चाहे ट्रेन में हो, चाहे घर में हो, चाहे मधुबन में हो, चाहे सेंटर में हो, किधर भी हो, भाई उस समय में बाबा का समय है, बाबा हम बच्चों को याद करता है। हम बाबा को याद करते हैं अलग बात है, बाबा हम बच्चों को याद करते हैं, बच्चों को वरदान देते हैं, और उस समय में मैं वरदान मिस करे, मैं दूसरों को वरदान ही कैसे भरूं, दूसरों को शक्ति कैसे भरूं। और इस समय में इसमें दो बातें बहुत अच्छी बात दादी ने कही, एक तो इस समय में बाबा ने हम बच्चों को याद कर रहे हैं, वरदान धरे, यदि मैं मिस करेंगे आज का वरदान मैं मिस कर लिया, आज का अनुभव मैं मिस कर लिया। दूसरा जो है आज मुझे जो याद कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, वो लोग उठ करके पहले दादी आ रहे हैं, दादी आ रहे हैं, ऐसे वो लोग नाच रहे खुशी से, मैं जाने से पहले मैं मन के द्वारा उनका सेवा करूं, मन के द्वारा उनकी सकाश दूं, मन के द्वारा उनको शक्ति दूं, ये उनके अंदर इतने सेल्फ रियलाइजेशन था, जहां भी जाना है जाने से पहले उनको सकाश देना, वाइब्रेशन देना, उनको वरदान देना, ये उनके अंदर प्रैक्टिकल अनुभव था, प्रैक्टिस थी, और उसके साथ साथ उस नियम पर उनके अटल थे, अडोल थे और सदा दृढ़ता थे उस नियम पर भी। इसके कारण उन्होंने इस ईश्वरी विषद ने बाबा अव्यक्त होने के बाद में साकार में निमित बनकर के इस ईश्वरी विश्वविद्यालय को विश्व व्यापक बनाया। क्यों कैसे बनाया? उनके अंदर दृढ़ संकल्प था, कोई भी संकल्प आए उसको साकार करके दिखाना, कोई भी बात उनके सामने आए उसको विघ्न भी आए वो दूर से भगा सकती थी, इतनी पावरफुल थी। आज भी दिन में भी आप सबके सौभाग्य है, जानकी दीदी हमारे सम्मुख है, गुलजार दादी हमारा साथ है, अनेक दादियां अभी भी, रतनमोहिनी दादी है, देखो रतनमोहिनी दादी भी इतनी बड़ी उम्र में अमृत वेले आकर के कभी मिस नहीं करती, इधर आकर के योग कराती, मेरे को आश्चर्य लगते, बहुत लोग क्लास में नहीं रहते उसी टाइम में, दादी इतनी सारा दिन बिजी होने के बावजूद भी इतनी बड़ी उम्र में भी इधर आकर के योग करती है, योग कराती है और दान देते हैं। हम लोग मिस करते हैं, इसका मतलब ये अमृत वेले के महत्व लोगों को मालूम है, वह बाबा का जो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने का अनुभव नहीं है, वह इनकी पहचान नहीं है, अभी तक इनका तीसरा नेत्र खुला नहीं है, थोड़ा बहुत खुला है, थोड़ा बहुत शांति का अनुभव हो गया, थोड़ा बहुत इनके अच्छे स्वच्छ वातावरण है, यहाँ अच्छी वातावरण है, वह ज्ञान अच्छा लगता है, परंतु अच्छा को शक्ति में परिवर्तन कर दे, अच्छा को संस्कार में परिवर्तन करे, अच्छा को दृढ़ता में परिवर्तन करें, अच्छा को फरिश्ता के परिवर्तन कर दें, अच्छा को देवता के रूप में परिवर्तन करें, ये इसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। ऐसे दृढ़ संकल्प करेंगे तो तब तो एक एक बाबा ने इस धरती पर प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष कैसे होगा, बिंदु प्रत्यक्ष नहीं होगा, बिंदु ने हम सब बच्चों को इतनी वरदान दे करके इतनी बाप समान बनाया तब तो प्रत्यक्ष होगा। कोई भी मंदिर बनता है, मंदिर से पहले जो निज मूर्ति है, मूर्ति से देखने से पहले पहले क्या देखते हैं, गोपुरम देखते हैं, इतने बड़े आकार देखते हैं, इतने बड़े ऊंचाई देखते हैं, इतने बड़े रचना देखते हैं, और रचना को देख करके हाँ इतना बड़ा मंदिर है, इतने बड़े भव्य मंदिर है। परंतु ऐसे ही बाबा के बच्चों की रचना को देख करके, उनकी सेवा को देख करके, उनकी तपस्या को देख करके, उनकी साधनों को देख करके, उनकी जीवन को देख करके दुनिया ये समझेंगे सचमुच इनको भगवान मिला है, भगवान इनको रचा है, संगम युग में उसकी रचना ये बच्चे हैं, और बाबा ने इन बच्चों को रचना रचा है, क्योंकि इस घोर कलयुग में इतनी लड़ाई की दुनिया में, अंधकार की दुनिया में, देहाभिमान की दुनिया में, मेरा तेरा की दुनिया में, और एक दो को टांग खींचने वाले, ठगी करने वाले, धोखाधड़ी देने वाले दुनिया में इतनी अच्छी विश्वास इनके पास है, आस्था इनके पास है, पवित्रता इनके पास है, शांति इनके पास है, सद्भावना इनके पास है, शुभ भावना इनके पास है, क्षमा भावना इनके पास है, ये सभी दुनिया में खत्म हो चुकी है, क्षमा भावना भी नहीं, न सद्भावना नहीं, दुर्भावना की क्लाउड्स सब जगह में बिखरे हुए हैं, और ऐसे अंधकार की दुनिया में सद्भावना की, शुभ भावना की, प्रेम भावना की, सत्यता की, पवित्रता की शक्ति काम कर सकते हैं, दुनिया में दौलत हो सकते हैं, दौलत का भी चंद दिन का दौलत चूर चूर हो रहा है, और उसका भी नतीजा आप सभी देख रहे हैं दुनिया में, बड़े बड़े लोग क्षण मात्र में गिर जाते हैं, तख्त भी चले जाता है, ताज भी चले जाता है, और स्थिति भी चले जाता है, ऐसी स्थिति संसार में रोज एक नाटक के रूप में, खेल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऐसी समय ब्राह्मणों में अढ़ोलता, ब्राह्मणों में निश्चय, ब्राह्मणों में विश्वास, ब्राह्मणों में भी एकता, ब्राह्मणों में विकास, ब्राह्मण जीवन में ऐसी एक महान शक्ति का अनुभव करें, वो शक्ति का अनुभव करने के लिए सबसे पहले हमारा जीवन में ऐसी संस्कार होना चाहिए। हमारा संपद क्या है, हम क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आए, सत्युग से इधर आए, सत्युग में हमारा संस्कार ही हमारा अस्ति थे, 84 जन्म तक खर्च करते आए, 84 जन्म तक इसको हमारा संपत्ति थी, तो स्थूल संपत्ति तो उसी टाइम में एंजॉय किया, उसी टाइम में छोड़ दिया, उसी टाइम में परिवर्तन हो गया, उसी टाइम में चले गया, परंतु हमारा निजी संस्कार क्या है, वो संस्कार ईश्वरीय संस्कार है, हमारा जन्म जन्मांतर हमारा साथी है, उसके आधार से हमारा संबंध है, उसके आधार से स्थिति है, उसके आधार से संपत्ति है, उसके आधार से स्टेटस है, उसके आधार से सर्व प्राप्ति है। यदि हमारा संस्कार बाप समान नहीं बन सकता है, यदि हमारा संस्कार ईश्वरीय संस्कार के रूप में विकसित नहीं हुआ, इसका मतलब हमने इसी जल में कुछ पाया नहीं है, कुछ प्राप्ति में कमी है, तब तो हमको कोई ना कोई बाद में भी कम हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है हमारा संस्कार को चेक करना चाहिए, हमारा संस्कार बाप समान है, हमारा संस्कार बाबा का संस्कार से मैच होता है, ऐसी संस्कार को इस संगम युग में ही धारण कर सकते हैं, आगे जाकर के नहीं धारण कर सकते। जो पाया पाना है इसी समय में पाना है, और जो पाया था पा लिया था, एक गीत संगम युग की है, परंतु उसका निजी रूप तब हो सकता है हमारा परिवर्तन जीवन से, हमारा कितने परिवर्तन हुआ है, यदि परिवर्तन में कमी है तो वो भी दिखाई देता है। इसके लिए परिवर्तन के लिए भी वेला भी कितना है, अब सारे कल्प में अभी संगम युग में भी अभी कितनी समय बाकी है। देखिए संगम युग में बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा प्रवेश किया, तब बाबा ने साकार में जब चाहे तब मिल सकता था, चाहे दिन हो शाम को रात हो सुबह हो, बाबा के तन में बाबा मिलते थे, और उसका आनंद उसका खुशी उसका भाग्य उसका सौभाग्य कितनी आनंद था। अभी धीरे धीरे वो कम होकर के बाबा ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गया, अव्यक्त होने के बाद में दादी गुलजार दादी के तन में बाप दादा प्रवेश होकर के बाबा बच्चों को शिक्षा दिया और वरदान दिया, और देते देते उस समय भी 8 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा रात में शाम को 7 बजे सुबह 10 बजे तक बाबा मिलते थे। ऐसी कई दिन ओम शांति भवन में बाबा ने मिला था, सुखधाम का उद्घाटन के दिन बाबा सुबह 10 बजे तक बाबा हमारे साथ थे, और शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 4-5 बजे तक। अभी समय बीत गया डायमंड हॉल में आने के बाद में 4-5 घंटा कभी फिर भी 12 बजे तक बाबा कुछ समय तक मिलते थे, आजकल 2 घंटा मिलना मुश्किल है, 1 घंटा मिलना भी बड़ी बात है, उसकी रथ की परिस्थिति ऐसी है इतनी दादी बैठना भी मुश्किल है, परंतु फिर भी बाबा ने हम बच्चों को बहुत प्रकार की वरदान दिया है, वातावरण बनाया है और शिक्षा दिया है, फिर भी बाबा हम बच्चों को संतुष्ट भाव का अनुभव कर रहा है, अव्यक्त वतन से इधर आकर के हम बच्चों से मिल रहे हैं, परंतु ये समय भी कितने दिन चलेगा ये भी सोचने के विषय है। और यदि हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के हमारा स्थिति नहीं बनाएंगे, हम खुद परिस्ता नहीं बनेंगे, हम खुद अशरीर नहीं बनेंगे, खुद निराकारी नहीं बनेंगे, खुद निर्विकारी नहीं बनेंगे, हम उल्टी कला का अनुभव कैसे करेंगे, हम वतन में कैसे जाएंगे, हम परमधाम में कैसे जाएंगे, इधर ही जाल बिछा करके झालों में फंसे रहेंगे, हमको वतन में कैसे रहें। बाबा कहते हैं अब घर जाना है, और घर जाने का कब हो सकता है ये सोचने के विषय है, हर एक को सोचने के विषय है ये। तो इसके लिए हम ब्राह्मणों को भी उड़ नहीं सकते तो दुनिया को कैसे परिवर्तन करेंगे, हमारा ये फर्ज है, हमारा ये उत्तरदायित्व है, हम संसार को बाबा ने स्वर्ग बनाने के लिए ये काम जो है ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मण जीवन परिवर्तन के आधार से वो परिवर्तन है, ऐसा नहीं हम डेट कब मिलेगा, बाबा पर कब परिवर्तन होगा, वो समय विनाश कब होगा, इस विनाश कब होगा कि प्रश्न नहीं है, हम कब फरिश्ता बनेंगे, हम कब वापस अपने घर जाने के लिए तैयारी करेंगे, और कब जाने के लिए एवर रेडी है क्या, ये सोचने की बात है। यदि हम तैयार है एवर रेडी है, और एक क्षण में हम अशरीरी बन सकते हैं, एक क्षण में अव्यक्त बन सकते हैं, एक क्षण में हमको फुल स्टॉप कर सकते हैं, एक क्षण में हमको संपूर्ण नष्ट मोही बन सकता है, तब तो हमको विजयी बन सकते हैं। इसकी बजाय हम लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे, एक दो के प्रति कंप्लेंट देते रहेंगे, अब कंप्लीट कब होगा, कंप्लेंट करने वाला कंप्लीट नहीं हो सकता, ये तो बाबा पहले ही बोला हुआ, सिर्फ कंप्लेंट ही करते रहेंगे और खुद कंप्लेंट नहीं होगा। दूसरों के स्वभाव संस्कार को देखते रहेंगे, अपना स्वभाव संस्कार को परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरों की बातों में इच्छुक है और उनको बहुत इच्छा थे उसको सुनने में व वर्णन करने में सोचने में टाइम लगा देगा, ईश्वरीय ज्ञान की सोच में कमजोर हो जाएगा, तब तो आत्मा कमजोर ही रह जाएगा। इसके लिए दूसरों की बातों को सुनना व बहुत उनके अटेंशन देना और उसको वर्णन करना ये बंद करना चाहिए। इवन आजकल टेलीविजन है, आजकल रेडियो है व दूसरे अखबार है, ये भी मनुष्य को बुद्धि को भ्रष्ट करने की विधि है। बुद्धि को तमा प्रधान बनाने के, बुद्धि को डाइवर्ट करने के लिए बुद्धि को मनुष्य मत में व मनुष्य मत भी नहीं है उस आसुरी मतों में जंजाल में फंसाने की विधि है। अभी कौन सी मत है अखबारों में टीवी में, कौन सी मत आता है? कोई ईश्वरी मत आता है क्या? सब मनुष्य मत, उसमें भी कौन सी मत आता? अच्छी बात तो होता ही नहीं, अच्छी बात तो लिखते भी नहीं, अच्छी बात दिखाते नहीं, और वही आसुरी मत। आसुरी मत, आसुरी कितना, किसी दूसरों की झगड़ा करने का, मारा पीटी करने का, भ्रष्टाचार का, अज्ञान का, तमो प्रधान का, यही बातें दर्शाते हैं। और इन बातों के चक्करों में अपने समय बर्बाद कर दे, अपने संकल्पों को बर्बाद कर दे, अपनी शक्तियों को बर्बाद करे, ये तो ये भी एक तरफ अज्ञान है, ये भी एक तरफ अपनी अज्ञानता है। तब तो उनको संपूर्ण बनने में विलंब हो जाएगा, इतना ही नहीं संपूर्ण बनने में संस्कार को शुद्धिकरण करने में बहुत कठिनाई हो सकता है। इसके लिए आजकल माया का जाल इतनी है, और टेलीविजन भी है साथ साथ में टेलीफोन भी है, टेलीफोन एक अच्छा साधन भी है, अच्छा माया भी है। मैं बताऊँ आजकल तो ये बड़ी माया टेलीफोन भी एक माया है। हाँ, कोई अच्छी काम कर रहे है, अच्छा सेवा कर रहे है, अच्छी बात कर रहे है, उसी टाइम में धड़क फोन आ जाएगा और उनका समय डाइवर्ट हो जाएगा, टाइम डाइवर्ट हो जाएगा, संकल्प डाइवर्ट हो जाएगा, साधना डाइवर्ट हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी माया है, मैं बता दूँ। इस माया से भी मुक्त करना चाहिए, उसके ऊपर भी कैसे हमको कंट्रोल करना चाहिए उसका भी विधि होना चाहिए। नहीं तो आजकल लोग एक एक फोन, दो दो फोन, तीन तीन फोन भी रख करके अपनी माया के चक्कर में आ जाते हैं। ये एक बड़ी माया है, और ये ऐसी माया है इसको जीतना बड़ी बात है, मैं बता दूँ। इसके लिए आजकल जितने भी विज्ञान के साधन है, ये साधन भी एक तरफ सूक्ष्म रूप का माया है। सूक्ष्म रूप की अपनी बुद्धि को एक विकास नहीं कर रहे, विनाश कर रहे। अब जितने विकास नहीं हो रहे, बुद्धि को एकाग्र नहीं कर रहे, विनाश कर रहे हैं, और उनका चंचल बुद्धि और कमजोर बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि, नीच बुद्धि, तमोप्रधान बुद्धि बनाने में ये सभी साधन बहुत सहयोग दे रहे हैं। दुनिया इसके लिए बहुत अति स्पीड में जा रहा है विनाश की ओर, संशय को बढ़ाने में, कंफ्यूजन क्रिएट करने में, और एक दो को बुद्धि भ्रष्ट करने के साधनों में ये लगे हुए। इससे भी आपको बच करके रहना चाहिए, इसके ऊपर प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें इसके ऊपर हम लोग अंकुश होना चाहिए, इससे जीत माया जीत होना चाहिए। यदि इस बातों में हम नहीं करेंगे तो आपका अमूल्य समय वेस्ट हो जाएगा। जब समय ही चलेगा तो और क्या रहेगा, जब समय चलेगा तो एनर्जी चलेगा तो बाद में बचेगा क्या, तो जिंदगी भी चले जाएगा, जिंदगी भी वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए ये बहुत बड़ी माया है, वो हमारा लक्ष्य तक पहुंचने में ये सभी। देखिए अर्जुन के सामने अर्जुन ने एक दृढ़ संकल्प करता है, फलाने को मारना है शाम तक, उससे पहले कितनी अक्षौहिणी सैन्य है उनको घेराव करते है, एक एक सैन्य घेराव करते है, बहुत सैन्य की समूह घेराव करते है, फिर भी उसने उनको नहीं देखते, उनका लक्ष्य को देखते है, फलाना को देखते है, मैं जो टारगेट रखा है उसी टारगेट को पहुंचना है। तब तो उसने अपनी उसी तरीके, क्योंकि उसने अपनी साथी रथ सारथी को बना दिया, चाहे महाभारत ने कृष्ण को दिया, हमने जीवन की सारथी किसको बनाया, बाबा ने, साथी को किसको बनाया, बाबा को बनाया। यदि बाबा के ऊपर निश्चय करके अपनी लक्ष्य के ऊपर जाने के लिए लक्ष्य रखते हैं तो इन चीजों की माया की बाबा सामने नहीं आ सकता है, ये चक्रव्यूह सामने नहीं आ सकता है, और ये अनेक प्रकार की विविध प्रकार की माया के विघ्न है सामने नहीं आ सकते। विघ्न भी आपको आएंगे तो आपको बहादुर बनाएंगे, आपको शक्तिशाली बनाएंगे, आपको विजयी बना सकते हैं और दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है अब बच्चों को हिला सके। बच्चों की संकल्पों में विकल्प क्रिएट करे, बच्चों के निश्चय में संशय क्रिएट करे, बच्चों की दृढ़ता में कमजोर बनाए, बच्चों की आस्था में विश्वास में कोई ब्रीच ऑफ फेथ कर दे। नहीं हो सकते, क्योंकि ये हो सकता है तब तो अपने अंदर कोई ना कोई अपनी कमजोरी है। इसके लिए बाबा ने इस समय में आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य माया जी, आपका लक्ष्य विजय बहु, आपका लक्ष्य फरिश्ता, आपका लक्ष्य देवता, आपका लक्ष्य बाप समान, आपका लक्ष्य फरिश्ता, आपके लक्ष्य संपूर्ण नष्ट मोही, आपका लक्ष्य रिटर्न होम, घर जाना वापस आपका लक्ष्य है। यदि इस लक्ष्य को हासिल करना है तो आपको बहुत प्रकार के विघ्नों से मुक्त होना चाहिए, बहुत प्रकार की मायाओं से विजय, केवल काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इतना ही नहीं, उनको एंटर होने का तरीका जो है ना आजकल बहुत है, इसका प्रवेश करने की द्वार जो है ना आजकल बहुत है। इसके लिए ये आज की साधन भी बहुत है, परंतु साधन को कैसे यूज करने है वो भी मालूम होना चाहिए, नहीं तो साधन भी मनुष्य को विघ्न रूप बन सकते हैं। इसके लिए उसके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, उसके आधार नहीं होना चाहिए, उसके बहुत आधार निर्भर होगा तब तो उनके अंदर कोई ना कोई अधीनता में आ जाएगा, जो अधीन में आएगा अधिकारी नहीं बन सकते, समय को नियंत्रण नहीं कर पाएगा, समय पर विजयी नहीं बन सकता है, समय पर मनमनाभाव नहीं हो सकता है, समय पर एकाग्र नहीं कर सकता है, समय पर उनको सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं कर सकते है। इसके लिए बाबा ने इन बातों पर भी बहुत सावधान भी दिया है। देखो इसके लिए ब्रह्मण जीवन का एक एक घड़ी बाबा के साथ व्यतीत होना चाहिए, संगम एक एक घड़ी विश्व की मालिक बनाने की समय, संगम के एक एक घड़ी फरिश्ता बनने का है, संगम युग खुशी का अनुभव करने का, खुशी का प्रदान दूसरों को वरदान देने के समय, हम तो इसके बजाय दूसरों को भी खुशी को छीन जाए, दूसरों को भी संकल्प वेस्ट कर दे, दूसरों को भी समय वेस्ट कर दे, दूसरों को भी शक्ति को वेस्ट कर दे अपनी कमजोरी के कारण, ये भी एक अपने आप को विघ्न है, ये भी अपने आप को भविष्य की जो काते में भरना चाहिए उसके बजाय कमजोरी में चले जाएगा, वो भी एक विघ्न हो जाएगा, तब तो ब्रह्मांड जीवन सफलता नहीं होगी। इसके लिए इसमें भी सावधानी रखना चाहिए, मेरे द्वारा मेरे कारण मेरे चलन मेरे सोच मेरे संस्कार के कारण किसी को भी किसी भी प्रकार के नुकसान पहुंचाता है उसका रिस्पांसिबिलिटी मैं हूं। इसके लिए पहले ही बाबा ने कहा हुआ, आप कौन है, आप तो पूर्वज हो, आप तो पूजनीय, पूर्वज और पूजनीय का संस्कार क्या होना चाहिए, बाबा ने ये पहले ही हम लोगों को जागृत कराया, वरदान दिया, अनुभव कराया, आप पूर्वज हो और पूजनीय, आपका स्थान इस कल्प वृक्ष में किधर है, बाबा के साथ है, बीज के साथ है, वट के साथ है, और आपका एक एक संकल्प इस कल्प वृक्ष को शक्ति देना है, कल्प वृक्ष को सकाश देने वाला, कल्प वृक्ष को पूज्य अनुभव कराने वाला है, और पूर्वज का अनुभव करें, पूर्वज और पूज्य के अनुभव के आधार से कल्प वृक्ष के परिवर्तन है। इसके लिए यदि हमारा पूर्वज होते हुए हमारे पुराने संस्कार ही रहे और देवता संस्कार नहीं बने, पूजनीय संस्कार नहीं बने, मैं खुद ही अपनी वृक्ष को अच्छे शक्ति देने के बजाय हम कमजोर दे रहे हैं, जो उसका परिणाम भी वही होगा। इसके लिए यही कहना चाहता हूँ, आप सबको अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए, लक्षण को भी सामने रखते हुए परिवर्तन को तीव्र गति करें। बाबा ने कहा था परिवर्तन तीव्र पुरुषार्थ के माध्यम द्वारा, दृढ़ परिवर्तन के माध्यम द्वारा, दृढ़ संकल्प के माध्यम द्वारा पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, डबल पुरुषार्थ, ऐसी पुरुषार्थ करे हमको पुराने संस्कार को विजयी भाव, उससे हमको वापस देखने को मौका ना मिले और वो संस्कार हमारे डिक्शनरी में, जीवन की डिक्शनरी में, सोच की डिक्शनरी में, संस्कार के डिक्शनरी में, संबंधों की डिक्शनरी में समाप्त हो जाए। ऐसी समाप्त करने वाले सदा समाप्ति अर्थात समाधि स्थिति, निर्विघ्न स्थिति, निश्चिंत स्थिति में स्थित रहने वाले आप विशेष विजय आत्मा को, फरिश्ता आत्मा को, देवता आत्मा को ओम शांति नमस्ते। अभी हमारा 2 मिनट है, अभी योग में बैठे हैं।
प्यार भरता